करिश्मा जी अपने दोनों बेटों को इस तरह झगड़ते देख काफी परेशान हो रही थीं। तभी रानी माँ, जो उस वक्त गांव की एक ठकुराइन के वेश में थीं, वहां आ गईं। दोनों भाइयों को एक जगह खड़ा देखकर करिश्मा जी से बोली, करिश्मा जी। जैसे ही रानी माँ ने ये कहा, अमन और मान चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। अमन ने मान का कॉलर भी छोड़ दिया। तब करिश्मा जी हल्की सी फीकी मुस्कान के साथ बोली, जी जी ठकुराइन जी, कहिए। तब रानी माँ बोली, आपको कैसे पता चलता है कि आपका बड़ा बेटा कौन सा है और छोटा बेटा कौन सा है? तब करिश्मा जी मुस्कुराकर बोली, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं माँ हूँ इन दोनों की, और एक माँ तो आंखें बंद करके भी अपने बेटों को पहचान सकती है। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, रानी माँ उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दीं। वे लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी वे दोनों जादुई बच्चे, जो रानी माँ ने पैदा किए थे, वहां आ पहुंचे। वे दोनों एक दूसरे पर कुछ न कुछ फेंक कर मार रहे थे। तभी ठकुराइन जी उन्हें डांटते हुए बोली, ओहो ये शैतान बच्चे, फिर झगड़ा करते करते यहां तक आ गए। तब करिश्मा जी बोली, कौन है ये बच्चे और क्यों झगड़ रहे हैं? तब रानी माँ बोली, वो करिश्मा जी, ये हमारे पड़ोसी दिवाकर जी के बच्चे हैं। दोनों बच्चे बहुत झगड़ा करते हैं और झगड़ा करते करते हमारी हवेली में घुस आते हैं। तब करिश्मा जी ओहो कहते हुए मुस्कुराने लगी। तभी रानी माँ ने उन बच्चों को कुछ इशारा किया और वे बच्चे अमन और मान के आगे पीछे दौड़कर छिपने लगे। तभी अमन ने उनमें से जो लड़की थी उसे पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ, आप अपने भाई से क्यों झगड़ रही हो? तब उस छोटी सी बच्ची ने अपनी तोतली जुबान में कहा, भाई ने मेरी किताब फाड़ दी और मुझे मारा भी। जैसे ही उस लड़की ने प्यारी सी आवाज में ये कहा, उसका क्यूट सा चेहरा देखकर अमन मुस्कुराने लगा और बोला, आप आओ मेरे साथ, मैं आप दोनों की दोस्ती कराता हूँ। ऐसा कहकर अमन उस बच्ची को उसके भाई के पास ले जाने लगा। लेकिन उसका भाई वहीं से चिल्लाकर बोला, नहीं नहीं, मैं उसे मारूंगा, इसने मेरे बाल खींचे हैं। ऐसा कहकर उस छोटी बच्ची के भाई ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर उस बच्ची की ओर फेंका। पत्थर को अपनी ओर आता देख अमन ने उस छोटी बच्ची को एक साइड में कर लिया। वो पत्थर अब सीधा अमन के पीछे खड़े हुए मान के जा लगा। जैसे ही पत्थर मान पर पड़ा, मान के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। तभी रानी माँ के इशारे पर उस बच्चे ने लगातार दो और पत्थर मान को मार दिए। वे वही सुनहरे पत्थर थे जो रानी माँ को उनके कुल देवता ने दिए थे उस दानव को मारने के लिए। अब वे पत्थर मान को लग चुके थे और देखते ही देखते मान के शरीर का रंग बदलने लगा। इस बीच तारापरी भी वहां आ गई। मान के बदलते रंग पर सबसे पहले तारापरी का ही ध्यान गया। करिश्मा जी और अमन दोनों उन छोटे छोटे बच्चों में लगे हुए थे। अब चूंकि मान का रंग रूप कद सब कुछ बदलकर एक भयानक दानव के जैसा हो गया था, उसे देखकर तारापरी खुद को रोक नहीं पाई। उसके मुंह से एक तेज आवाज निकलने लगी, वो चिल्ला पड़ी। तारापरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर अमन दौड़कर उसके पास गया और उसे कंधों पर से पकड़कर बोला, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? तब तारापरी ने मान की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। सबने उस ओर देखा तो उन सबके भी होश उड़ गए। मान का शरीर बहुत बड़ा हो गया था और उसका पूरा रंग हरा और लाल हो गया था। वो दिखने में बेहद भयानक लग रहा था। करिश्मा और अमन एक दूसरे को देखने लगे और जल्दी ही एक भयानक दानव बने मान के पास जा पहुंचे थे। करिश्मा जी ने अमन की ओर इशारा किया कि वो पता करे कि मान को हुआ क्या है। लेकिन अमन जैसे ही मान की ओर करीब गया तो मान ने अपने मुंह से आग निकालनी शुरू कर दी। रानी माँ तारापरी के साथ चिबक कर खड़ी हो गई थी, मानो उन्हें कितना डर लग रहा हो, और रानी माँ ने मौका देखते ही उन जादुई बच्चों को गायब कर दिया। जब मान ने अपने दानव रूप में अपने मुंह से आग निकाली, तब अमन ने तारा और उसकी माँ की ओर देखा और उन्हें डरता देखा अमन ने उन्हें अंदर कमरे में जाने को कहा। और जैसे ही तारापरी अपनी माँ के साथ अंदर कमरे में जाने लगी, तभी उसी वक्त मान उछलकर तारापरी के सामने जा खड़ा हुआ था, जिसे करीब देखकर तारापरी रानी माँ के साथ चिल्ला उठी। और तभी मान ने अपना बड़ा सा हाथ आगे बढ़ाया और तारापरी को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसे अपने बड़े से मुंह के करीब ले जाकर बोला, तू सिर्फ मेरी है, तेरा ये जिस्म सिर्फ मेरा है। अमन को उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। अब उसकी आंखें एकदम से सुर्ख होने लगी और देखते ही देखते वो भी मान की ही तरह एक भयानक विशाल दानव परी के रूप में बदल गया। अमन ने अपनी भयानक और भारी आवाज में कहा, तारा को छोड़ दे मान। तब मान ने भी उसे यही जवाब दिया, तू हट जा मेरे और तारा के बीच में से, हट जा वरना मैं तेरी जान ले लूंगा, और मैं कोई मान नहीं हूं अमन जिन, गौर से देख मुझे। ऐसा कहकर वो दानव एक भयानक हंसी हंसने लगा। करिश्मा जी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अमन तो चलो एक जिन था, लेकिन मान तो जिन नहीं था और ना ही दानव था। उसके पास केवल कुछ शक्तियां थीं, लेकिन उसका कोई रूप नहीं बदलता था। लेकिन अब यूं अचानक मान का रूप बदल जाने से करिश्मा जी का हैरानी के मारे बुरा हाल था।
मान का रूप एकदम भयानक और विशाल था, जिसे देखकर अब करिश्मा जी को भी डर लग रहा था। करिश्मा जी सोचने लगी कि उनके बेटे को आखिर हुआ क्या है और अचानक से इतना भयानक रूप भला कहां से आया। अब करिश्मा जी को केवल एक ही रास्ता नजर आ रहा था। तभी करिश्मा जी को कुछ ख्याल आया। वो हाथ जोड़कर एक जगह बैठकर कुछ मंत्र का जाप करने लगी और जल्दी ही ध्यान में चली गई। और देखते ही देखते करिश्मा जी के जिस्म से उनकी आत्मा निकलकर सीधा उनके बगीचे में चली गई, जहां वो बरगद का पेड़ था। वहां पहुंचकर करिश्मा जी ने अपने दोनों हाथ जोड़े और परी महाराज से विनती करने लगी। हे परी महाराज, ये क्या हुआ है मेरे बेटे को? मेरी सहायता कीजिए। परी महाराज, मेरी मदद कीजिए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मान को हुआ क्या है। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी परी महाराज जी वहां प्रकट हो चुके थे। परी महाराज आते ही बोले, करिश्मा, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, तुमने आने में इतना समय क्यों लगा दिया? करिश्मा जी उनकी बात सुनकर और चौंक गई। और तभी करिश्मा जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, आप तो सब जानते हैं परी महाराज, आप ही हमारे कुल देवता हैं, आप ही हमारे बड़े हैं, कृपा करके आप हमारी सहायता करें परी महाराज। तब परी महाराज ने करिश्मा जी से कहा, करिश्मा, तुम्हारा बेटा मान मर चुका है और उसकी रूह एक भयानक दानव के कब्जे में है। जैसे ही करिश्मा जी ने यह सुना, वे निढाल सी होकर गिर पड़ी और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? करिश्मा जी को ये सुनकर ऐसा लग रहा था मानो उसके जिस्म में जान ही ना बची हो। मेरा बेटा मान मर चुका है। तब परी महाराज बोले, हाँ करिश्मा, करिश्मा हमारी बात ध्यान से सुनो, ये वक्त तुम्हारा रोने धोने का नहीं है, क्योंकि तुम अपने एक बेटे को खो चुकी हो। लेकिन अगर तुमने आज देर की तो आज तुम अपने दूसरे बेटे यानी कि अमन, जो आगे आने वाले परी महाराज की पीढ़ियों का वंशज है, तुम उसे भी खो दोगी। और अगर अमन की भी मौत हो गई तो फिर परी महाराज के परिवार का अंत हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। करिश्मा जी, जो अपने बेटे की मौत के बाद सदमे से निढाल हो गई थी, हालांकि उनकी आत्मा वहां थी, लेकिन उनका जिस्म, जो उस वक्त रानी माँ की हवेली पर था, उसकी आंखों से आंसुओं की लंबी धारा बह रही थी, जिसे रानी माँ ने बखूबी देख लिया था। लेकिन रानी माँ ने उन्हें जगाने की कोई कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनका केवल जिस्म यहाँ पर है, उनकी आत्मा तो इस वक्त अपने कुल देवता परी महाराज के पास है।
रानी माँ को मान की मौत का बहुत पहले ही पता चल चुका था। वो कब और कैसे, ये हमें बाद में पता चलेगा। अभी हमें ये पता करना है कि अमन को बचाने के लिए आखिर परी महाराज क्या बताने वाले हैं। परी महाराज ने करिश्मा जी से कहा, करिश्मा, तुम्हारा एक बेटा मान मर चुका है और हल्दी वाले दिन से जो तुम्हारे साथ रह रहा है वो कोई और नहीं बल्कि एक खतरनाक राक्षस का दानव रूप है, जिसके कब्जे में मान की आत्मा है। वो दानव बेहद शक्तिशाली है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। और अगर अमन ने उस दानव को बिना मान की रूह को आज़ाद कराए मार गिराया तो उस दानव के साथ साथ अमन की भी जान चली जाएगी। जैसे ही करिश्मा जी ने ये सुना, उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और उनका दिमाग एकदम से सुन हो गया। उन्हें समझ ही नहीं आया था कि वे क्या करें, क्योंकि उनका एक बेटा तो मर चुका था और अब उनके दूसरे बेटे की जान खतरे में थी। तब करिश्मा जी बिलख उठी, लेकिन तभी परी महाराज ने उन्हें तेज आवाज में टोक दिया और वे बोले, ये विलाप करने का समय नहीं है करिश्मा, अब जो हम कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनो। हमारे इस बगीचे के सरोवर में एक जल परी है, तुम उसके पास जाओ और उससे विनती करो कि वो तुम्हें अपना एक सुनहरी पंख दे दे, और याद रहे तुम्हें वो पंख ले जाकर सीधा अमन के हाथों में देना है। और जैसे ही अमन उस सुनहरी पंख से मान रूपी दानव को छुएगा, उसी वक्त मान की रूह उस दानव के अंदर से निकलकर अमन के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद जैसे ही अमन उस सुनहरी पंख और तिलस्मी पत्थर से उस दानव पर हमला करेगा, तब उस दानव का नामो निशान तक मिट जाएगा।